ہاں جی
وہ جڑ ندیوں میں جانور ہوتے ہیں, جڑت بدھی والے جانور ہوتے ہیں یا مانوی بدھی والے جانور ہوتے ہیں, اور چیتنیہ ندیوں میں کیسے جانور ہوتے ہیں جو ہیومن ندیاں ہیں؟ ہیومن ندیوں سے جانوروں کا لگاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لگاؤ ہو جاتا ہے تو ان کی بدھی میں کون سے جانور تیرتے رہتے ہیں؟ ہیومن جانور کی بات ہے یا وہ ان جانوروں کی بات ہے؟ ہیومن جانوروں کی بات ہے, تو سارا وائبریشن ہی خراب کرتے رہتے ہیں. ایسی ندیوں میں اسنان کریں گے تو ہمارا وائبریشن کیسا بنے گا؟ سورگی وائبریشن بناویں گی یا اور ہی نرک بناویں گی؟ اور ہی نرک بنے گا.
بابا کہتے ہیں کرموں میں شنکر کو پاک نہیں کرنا ہے, اگر کرو گے تو اردو کی طرح الٹا لٹک جاؤ. تو شنکر کے ایسے کون سے کرم ہیں؟
شنکر سے بچھو ٹنڈن پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ تو طاقتور ہے. کوئی باپ طاقتور ہو تو کیسے بھی آسری بچے پیدا ہوں گے ان کو کنٹرول کر لے گا, اور ہر ایک سادھارن باپ کے اگر بچھو ٹنڈن بچے پیدا ہوں گے تو پریشان ہو جائے گا یا آسانی ہو جائے گی؟ پریشان ہو جائے گا. باپ تو سرو سمرتھ ہے. بھکتی مارگ میں کہتے ہیں بھان پرسان سرو رس کھائیں تن کو مند کہت کو نائی. سوری ہے, اگنی ہے, یہ کوئی مند بدھی نہیں ہے, یہ گند کو بھی سوکھ جاتے ہیں. ان کی بات الگ ہے. بھگوان کا تو پارٹی نرالا ہے. کیسی دنیا میں آتا ہے پتت دنیا میں, کیسے تن میں آتا ہے پتت سے پتت کامی کانٹے میں آتا ہے. پھر اس کو سنگ کا رنگ لگتا ہے کیا؟ ابراہیم بدھ کرائسٹ کو سنگ کا رنگ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ ان کو تو لگتا ہے. تو وہ تو پارٹ ہی نرالا ہے, وہ سدگرو کا پارٹ ہے. بھکتی مارگ میں بھی کہتے ہیں کہ گرو کی آگیا ماننی چاہیے, گرو جیسا کرتا ہے ویسا نہیں کرنا ہے.
رام اور کرشن کا جو نام رکھتے ہیں تو ان کے جنم دینے والے ماں باپ نام رکھتے ہیں کہ ستیہ کے ماں باپ نام رکھتے ہیں؟
سنگم یوگ میں نام رکھے گئے ہیں یا ستیوگ تریتا دواپر کلیگ میں نام رکھے گئے؟ نام تو سارے سنگم یوگ پر رکھے ہوئے ہیں. اور سنگم یوگ میں ماں باپ نام رکھتے ہیں یا کام کے آدھار پر نام رکھے جاتے ہیں؟ باپ کام سکھاتے ہیں ایسے ایسے کرم کرو, تو جو بچے اچھے سے اچھے کرم کرتے ہیں ان کے اچھے سے اچھے نام ڈال جاتے ہیں. رام نام پڑا تو ضرور یوگیوں کی آتما نے جس میں رمن کیا ہے, جس کی یاد میں, اس کا نام رام پڑ گیا. شاستروں میں بھی لکھ دیا رمیتے یوگینو یسمی نیتی رام. یوگی لوگ جس میں رمن کرتے ہیں وہی رام ہے, وہ یوگیوں کا ایشور ہے. یوگیشور شنکر کو بھی کہا جاتا ہے, یوگیشور کرشن کو بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے اسے کرشن کو سمجھ لیا. جو بچہ بدھی کا پارٹ بجاتا ہے واستو میں ہے سنگم یوگی کرشن کی بات. یوگیشور سنت کمار کو بھی کہا جاتا ہے. برہما کا جو بڑا پتر سب سے جاستی گیانی تھا اس کو یوگیشور کہا گیا. واستو میں जिसके नाम से सनत सनत कुमार नाम से सनातन धर्म की स्थापना हुई है, जो सनातन धर्म की स्थापना में सबसे जास्ती योग देने वाला है वो ही राम है, वो ही योगीश्वर शंकर है, वो ही सनत कुमार है।
जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया ऐसा कहा जाता है।
हाँ जी, इसका अंत करने वाला आदि में होगा या नहीं होगा? है आदि सो अंत कहा जाता है, माने सृष्टि की आदि में जो थे वो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी या निष्कष्ट आत्माएं होंगी? श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। जिन्होंने नई सृष्टि की आदि की वो ही फिर अंत में भगवान जब आते हैं तो नीचे ते नीच बन जाते हैं। वो आदि करने वाले ही अंत तक विजयी रहते हैं क्योंकि भगवान उनका सहयोगी रहता है, बाकी अंत में सब परमधाम चले जाएंगे, वो अंत तक पाठ बजावेंगे। इसलिए उनसे कहे जाते हैं ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले, जिन्होंने थोड़ा पार्ट बजाया षष्ठी चक्र में वो ज्यादा अनुभवी हुए, या जिन्होंने पूरे षष्ठी चक्र का ऑलराउंड पार्ट बजाया वो ज्यादा अनुभवी हुए? ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले, आदि से अंत का पार्ट बजाने वाले ज्यादा अनुभवी हुए, सबके पूर्वज हो गए, सबके पूजनीय हो गए। पूर्वजों की पूजा की जाती है ना। और
बाबा सतयुग की आबादी 9 लाख बताई हुई है, 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले, उसमें 4.5 लाख जो है वो 9 धर्मों से कनेक्टेड है, वो तो 9 25 45
है,
सूर्यजी 50,000 चंद्रजी 50,000।
4.5 लाख जो है वो प्रजा दो वर्गों में से आती है, एक चंद्रवंशी एक सूर्यवंशी। चंद्रवंशी माने चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रमा की औलाद, और सूर्यवंशी माने सूर्य को फॉलो करने वाले सूर्य की औलाद। हाँ, तो
ये एक एक धर्म के 50,000 हो गए, 9 25 45 हजार है, 4.5 लाख
4.5 लाख हैं, उनके 9 हिस्से किए गए।
हाँ, सूर्यवंशी के 50,000 है, चंद्रवंशी 50, इस्लामवंशी 50, बौद्ध 50, क्रिश्चियन 50, संन्यास 50, मुस्लिम 50 और सिख धर्म के 50 और आर्य समाज के 50, 9 25 45 हो गए।
हाँ,
जो सूर्यवंशी के 50,000 है वो द्वापरी में कन्वर्ट होते हैं क्या? और अनेक धर्म
तो पक्के कहाँ रहे? पक्के तो उनको कहा जाएगा जो आज से लेकर के अंत तक कन्वर्ट नहीं होते, टकराते रहते हैं विदेशियों से।
50,000 टकराते रहते हैं।
हाँ जी,
कन्वर्ट नहीं होते।
सूर्यवंशियों में ताकत होगी तब तो टकराएंगे। सूर्य क्या करता है, खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। अग्नि में जितना तपते हैं उतना पावन बनते हैं, कुंदन बनते हैं। सूर्य की रोशनी भी तपाती है, यह है ज्ञान की रोशनी। और
कृष्ण के साथ गोपी और राम के साथ
ये तो राम और कृष्ण के भक्तों की लड़ाई है क्या? जो राम के भक्त बने, राम के जो फॉलोअर बने स्पेशल, उनमें विकार ज्यादा होते हैं या नहीं होते हैं? उनमें जास्ती विकार होते हैं। क्यों? कृष्ण के फॉलोअर्स में जास्ती विकार क्यों नहीं होते? क्योंकि कृष्ण की आत्मा की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्यों मिलाई गई क्राइस्ट से? कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स में बुद्धि ज्यादा होती है या राम और राम के फॉलोअर्स में बुद्धि ज्यादा होती है? वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, और वो किसको फॉलो कर लेते हैं? क्राइस्ट को फॉलो कर देते हैं, विदेशियों को। राधा कहां से आएगी? विदेश से आती है या स्वदेश से आती है? विदेश से आती है। तो संस्कार तो विदेशियों के पड़ जाते हैं ना। हाँ जी, समझ में आया? किसने पूछा था? बात समझ में आ गई? हाँ जी।
भाई, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें अष्टदेव आ सकते
हैं?
12 ज्योतिर्लिंग में अष्टदेव?
अष्टदेव 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो 12 उन आत्माओं की यादगार है जो 11 रुद्र बनते हैं, जिनमें मुखिया प्रवेश करता है, सिंह प्रवेश करता है या मुकर्रर पार्टधारी प्रवेश करता है। शिव सब में प्रवेश नहीं करता है, शिव तो एक व्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होता है संसार में। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो आत्मा 11 रुद्रों में प्रवेश करती है। इसलिए 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम गाए हुए।
बाकी जो शिवलिंग शिव मंदिर रहते हो
यादगार है, और रुद्रगणों की जो भी रुद्रगण हैं, उन्होंने बीज रूप स्टेज धारण की है या नहीं की है, लिंग रूप बने हैं या नहीं बने हैं, नाक आंख कान इंद्रियों की स्मृति को भूले हैं या नहीं भूले हैं? भूले हैं, इसलिए उनकी यादगार है। अब वो चाहे 108 की माला के रुद्रमण के हों, और चाहे वो 1,00,000 शालिग्राम हो जो रुद्र यज्ञ में बनाए जाते हैं, वो भी यादगार है, नंबर वार है। एक जैसी मालाएं नहीं है और एक जैसी आत्माएं नहीं है। और
12 में से 8 अष्टदेव है और 4 अष्टदेव,
ठीक है,
अष्टदेव क्या हुआ?
उनका काम क्या है? तो ये काम आसान है या कठिन है? ये कठिन काम सब कोई नहीं कर पाते हैं। निष्कष्ट काम है या श्रेष्ठ काम है? शंकर को भी बाई ओर बैठाया है या दाई ओर बैठाया है? बाई ओर क्यों बैठाया? उसके हाथ में जो काम आता है वो काम कैसा है? दाएं हाथ का काम है या बाएं हाथ का काम है? हैं? अरे वाम मार्गी काम है, वाम मार्गियों के संसर्ग संपर्क में ज्यादा आता है या दाएं मार्ग वालों के संपर्क में ज्यादा आता है? बाप बाहर संभालता है और मां अंदर संभालती है। उसका मां का नाम है ब्रह्मा और बाप तो जगत पिता है। दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं, बड़ी कठोर आत्माएं, उनको भी कंट्रोल करने वाला है। ऐसे ही वो 3 राम के भाई हैं जो 3 धर्मों के मुखिया हैं। एडवांस पार्टी में आदि वाली आत्माएं हैं ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? ज्यादा पावरफुल हैं। बीच में आने वाले लल्लू और लल्लू कुंजी तो विरोध कर भी नहीं सकते, वो आदि से लेकर के अंत तक विरोध करती है। सदगुरु निंदक ठहर न पा रहे हैं, नजदीक उनको सेवा करने का चांस नहीं मिलता। अंत में जब विनाश होगा तो विनाशी धर्मखंडों में जाकर के सर्विस करेंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसी आत्माओं को निकालने के निमित्त बनेंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसी सशक्त आत्माएं निकलेंगी तो अपने फॉलोअर्स को खींच करके बाप का बनाई देंगे। और
मार्ग में कन्याकुमारी को ज्यादा घर दिया है, तो बेहद में कौन सी कन्याकुमारी जिसने पार करना था?
जो चंद्रवंशी की राधा है, जो लक्ष्मी बनती है, राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी, तो वो राधा बचपन से लेकर के और जब तक ज्ञान में आती है, ज्ञान में आने से लेकर के अंत तक कुमारी ही रहती है या पवित्र बनती है? कुमारी रहती है। इसलिए कुमारी कन्या का गायन है, उसके मुकाबले दूसरा गायन है अदर कुमारी का। वो कुमारी कन्या है, भारत माता का पाठ बजाने वाली, उसमें प्योरिटी की विशेषता है। भारत की कन्या माताओं की पवित्रता की ज्यादा संभाल की जाती है या विदेशी कन्या माताओं की ज्यादा संभाल की जाती है?
भारत।
तो भारत माता है शिव शक्ति अवतार, प्योरिटी के आधार पर वो ताकत आ जाती है। फिर उसके मुकाबले दूसरी है अधर कुमारी जगदम्बा। ब्राह्मण जीवन काल में ही थोड़ी बेवफाई हो जाती है, अधर कुमारी बन जाती है।
बाबा, ये जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो संत लोग होते थे, महात्मा बसवेश्वर, ज्ञानेश्वर, महात्मा बसवेश्वर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, ये तो शरीर छोड़ दिए, बाद में पुनर्जन्म लेके एक पार्ट
बजाते
मैंने एक से बात किया तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले उनकी सदगति हो गई। बोले
तो आपने उनकी बात मान ली?
मान
ली, तभी तो भरी सभा में बोल रहे हैं।
किया उनके साथ?
आपको कुछ शक है? अगर आपको शक नहीं होता, पक्का होता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपको यहाँ बोलने की जरूरत ही क्या है? वो तो झूठी बात है।
झूठी बात है बाबा, उनसे मेरा महीने कहा सदगति हो ही नहीं सकती।
सदगति हो ही नहीं सकती, सदगति होके जाएंगे कहाँ? एक की सदगति होगी तो उनके पीछे ढेर जाएंगे। एक की सदगति थोड़ी हो सकती है, एक के अनेक फॉलोअर्स बनते हैं। अगर सबकी सदगति होती जाए तो दुनिया की जनसंख्या कम होगी या ज्यादा होगी? कम होती जाएगी। ये तो नियम बना हुआ है, जो भी ऊपर से आते हैं वो इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं, कोई भी वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान आते हैं और जन्म मरण के चक्र में आते आते तमो प्रधान बनते जाते हैं, सुख भोगते भोगते। जितना इंद्रियों से सुख भोगेंगे उतना तमो प्रधान बनते जाते हैं, नीचे गिरते जाएंगे। तो ऊपर चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। अगर ऊपर चढ़ जाए तो ऊपर चढ़ाने वाले को भगवान कहेंगे या इंसान कहेंगे? तो वो भगवान हो गया। भगवान को बीच में आने की क्या दरकार? भगवान तो अंत में ही आता है और अंत में आकर के सारी दुनिया की सदगति करके जाता है। दो चार की सदगति करे तो वो ऊंचते ऊंचे भगवान यह सबकी सदगति करे वो ऊंचते ऊंच भगवान। अपनी भी सदगति नहीं कर पाते, दो चार की भी तो करेंगे कहां से।
उनके साथ बातचीत में ये हो गया, मैं बोला उनकी सदगति हो ही नहीं सकता बोला, वो बोले तुम ऋषि समाज में जन्म लेके उनको ऐसा क्यों बता रहे
हैं,
तुम जिस धर्म में जन्म लिए हो उनके बारे में ऐसा क्यों बता रहे। बोले मैं बोला उनकी सदगति हो ही नहीं सकती।
अब वो एक कहे हो सकती है, दूसरा कहे नहीं हो सकती है, तो प्रूफ देने पड़े ना, बिना प्रूफ के कैसे मानेंगे। उनको बताना पड़े कि दुनिया नीचे गिरती जा रही है, और नीचे गिरने वाली दुनिया में वो आए कहां से, वो आत्माएं उसे पूछो कहां से आई, तो वो तो जवाब नहीं दे सकेंगे। आपके पास तो जवाब है कि आत्माएं कहां से आती हैं, आती हैं फिर वापस जाने का रास्ता उनको मिलता है या नहीं मिलता है। वापस जाने का रास्ता किसी को पता ही नहीं है, सब जन्मों के चक्र में इसी दुनिया में चक्कर खाते रहते हैं। वापस तो वो ही ले जा सकता है जिसके ऊपर कर्म का बंधन न चढ़ता हो, जो संघ के रंग में न आता हो। इस दुनिया में ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो संघ के रंग में आकर के नीचे न गिरती हो। सबको संघ का रंग लगता है। एक शिव बाबा है, शिव आत्मा ही ऐसी है जिसको संघ का रंग नहीं लगता। मुकर्रर रथ में रहता है, पतित तन में रहता है, पतित इंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन संघ का रंग नहीं लगता है। जिनको संघ का रंग लगता है उनका पुरुषार्थ कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है, ऊंचा चढ़ता है, डाउन हो जाता है।
विद्या कार्य द्वारा जो अव्यक्तवादी चलती है उसके अंत में बाप दादा याद कर देते हैं, जबकि वहाँ बाप होते ही नहीं, केवल दादा होते हैं, तो बाप दादा क्यों कहा जाता है।
बाप दादा कहा जाता है, वो जो अव्यक्त वाणी चलती है उसका क्लैरिफिकेशन देने वाला राम बाप है, बच्चों के सामने टीचर के रूप में, और दादा है ब्रह्मा की सोल।
परंतु वहां पर तो बाप क्लैरिफिकेशन कहां दिया ही नहीं जाता।
वो जो बाप है वो अकेला कुछ नहीं करता, बिंदी बाप। बिंदी बाप भी बाप कब कहा जाता है, जब साकार में होता है तो बाप कहा जाता है। इसलिए राम वाली आत्मा बाप का पार्ट, बल उसमें शिव की सोल पार्ट बजाती है, दोनों ही बेहद के बाप हैं। और कृष्ण वाला वाली आत्मा बच्चे का पार्ट, बच्चा बुद्धि का पार्ट, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। और दादा की आत्मा को बाप की याद रहती है, बल बाप के दो रूप हैं, एक निराकार और एक साकार। तो ब्रह्मा जब गुलजार दादी में रहता है तो उनको बेसिक नॉलेज का प्रभाव ज्यादा रहता है कि एडवांस नॉलेज याद रहती है। बेसिक नॉलेज का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसलिए उनको निराकार याद आता है।
सेंटर के एक बहन जिसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि बाप दादा आते हैं, ये स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि दोनों भी आते हैं यहाँ पर, इसलिए तो कहते हैं वो बाप दादा।
अगर दोनों आते हैं तो बाप जो है वो निराकार बाप आता है या साकार निराकार दोनों का मेल आता है, पूछो उनसे कौन आता है। कहेंगे निराकार शिव ज्योति बिंदु आता है, यही कहेंगे ना। तो शिव ज्योति बिंदु को सूक्ष्म शरीर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर तो जिसमें प्रवेश करता है उसको कुछ याद ही नहीं रहता। कोई भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करेगी तो जिसमें प्रवेश करेगी उसको दबोच लेगी उसकी आत्मा को, वो सब कुछ भूल जाता है। भूल जाता थी भी सब कुछ भूल जाती। और शिव ज्योति बिंदु पतित में प्रवेश करेगा या पावन कन्या में प्रवेश करेगा,
पतित में,
हाँ पतित में प्रवेश करते हैं। आपके पास ढेर सारे पॉइंट हैं जो तरातर तरातर उनको सुना करके ठंडा कर दो।
माताओं के लिए बीबी मरे तो हलवा खाओ,
ऐसे
बीबी मरे तो हलवा खाओ,
अम्मा मरी तो हलवा खाओ। देखो माताओं को मोह का कीड़ा ज्यादा खाता है क्या, बाप का जो पार्ट है उनको मोह का कीड़ा उतना नहीं खाता है। मोह का कीड़ा ऐसा है कि जिसको खाता है और जिसमें लगता है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक में मोह आएगा तो जिसको याद करेगा उसमें भी मोह आ जाएगा। इसलिए बोला भक्ति मार्ग में कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब प्रकार के दुखों का मूल मोह है। ये लगाव झुकाव अटैचमेंट, इसलिए बोला कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। बच्चे को ज्यादा अटैचमेंट किसका लगता है, संग का रंग ज्यादा किसका लगता है, माँ का। और पति को ज्यादा अटैचमेंट किसका लगता है, बीवी का। तो अटैचमेंट से बच जाएं, उस मोह के बंधन से छूट जाएं, तो खुशी का हलवा खाना चाहिए ना।
भक्ति मार्ग में संत परम वैकुंठवासी हो गए ऐसे करके वो उनका शरीर नहीं
होता। आपने जिनसे सुना है उनकी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया, उनसे पूछा क्यों नहीं कि स्वर्ग है कहाँ इस दुनिया में, कहीं है स्वर्ग ऊपर नीचे, इसी दुनिया में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग होता है इसी पृथ्वी पर नरक होता है, या ऊपर नीचे कोई सितारे हैं कोई ग्रह उपग्रह हैं जहाँ स्वर्ग नरक होता है, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है इसी पृथ्वी पर नरक है। जीव जंतु इसी पृथ्वी पर होते हैं, दूसरा कोई ग्रह उपग्रह नहीं है जहां जीव जंतु होते हों। इस पृथ्वी पर भी ऐसे स्थान है जहां कोई जीव जंतु नहीं होता, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बर्फ ही बर्फ, जीव जंतु होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तीखी तिरछी पड़ती हैं, दूर हो जाता है सूर्य। और पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के नजदीक पड़ता है वहां जीव जंतु हैं। तो जीवन होने के लिए एग्जैक्ट एक्यूरेट दूरी चाहिए, नहीं तो जीवन नहीं पनप सकता। दूसरे दूसरे ग्रह उपग्रह तो सूरज से कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं, वहां तो जीवन होने का सवाल ही पैदा नहीं है। इसलिए जो स्वर्ग नरक की गाथा बताते हैं कि वो स्वर्ग में गए, जाएंगे कैसे, स्वस्थिति में रहना जानते हैं जो स्वर्ग में गए, स्वर्ग का अर्थ ही नहीं जानते। स्वर्ग का अर्थ ही है जो स्वस्थिति में गया वो स्वर्गवासी हुआ, और स्वस्थिति में जाना सिखाया किसने, है? कोई साधारण आत्मा स्वस्थिति में जाना सिखाएगी, जितनी भी मनुष्य आत्मा है सब परिस्थिति के वश में हो जाती है। जब खुद ही परिस्थितियों के चक्कर में आ जाती है जन्म जन्मांतर, तो दूसरों को या खुद को उस स्वस्थिति में स्थिर कैसे करेंगे। तो एक भगवान ही है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, कभी भी परिस्थिति में बंधता नहीं, पर चिंतन में नहीं आता, पर से प्रभावित नहीं होता, कोई का संग का रंग उसको नहीं लगता और कभी भी नहीं लगता, एक सेकंड भी नहीं लगता। वो ही स्वयं स्थिति में रहना सिखाता है। तो ये सब झूठी बातें बोलते हैं कि वो ब्रह्मलोक गया, वो स्वर्गलोक गया। पहले तो ये तो बताओ स्वर्ग है कहां, ये ही पता नहीं है स्वर्ग कहां है और ब्रह्मलोक कहां है, तो जाने आने की बात कहां से आ गई। शरीर छोड़ते हैं इसी दुनिया में जन्म ले लेते हैं, हाँ अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे घराने में जन्म लेंगे, दुख देने के कर्म किए होंगे तो नीच घराने में जन्म मिलता है, खराब चोला मिलता है।
सूर्य की कलाएं कम नहीं होती हैं, इसी तरह आज भी 16 कला संपूर्ण आत्माएं मौजूद होंगी।
सूर्य की कलाएं कम नहीं होती हैं, जैसे बाप ज्यादा ताकतवर होता है या बाप से पैदा होने वाले बच्चे जो वंश परा में पैदा होते रहते हैं वो भी ताकतवर उतने ही बने रहते हैं,
बाप से बेटे सब एक ही होते हैं,
एक ही जैसे होते हैं। आज से 400 वर्ष पहले जो मनुष्य थे वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे, थे ना, महाराणा प्रताप की तलवार उठाते नहीं बनती, म्यूजियम में रखी हुई है। तो कहां पहले के मनुष्य, पहले के बाप, और कहां उनके बच्चे दर बच्चे दर बच्चे पैदा होते गए, गाल चुपट्टी बनते गए, आंखें अंदर धसती गई। तो 84 जन्मों में कितना पतन हुआ है, माने बाप में ज्यादा ताकत होती है या बच्चे में ज्यादा ताकत होती है, बाप में ज्यादा ताकत होती है। रचयिता ताकतवर होता है, रचना उतनी ताकतवर नहीं हो सकती, इसलिए सूर्य सबका बाप है, उसमें जितनी ताकत है उतना सूर्यवंशी बच्चों में ताकत नहीं हो सकती। तो जो सूर्यवंशी बच्चे इस दुनिया में हैं वो भी संग के रंग में आ गए, कोई बड़े राजा का बच्चा संग के रंग में आ जाए, महाराजा का बच्चा संग के रंग में आ जाए, और गरीब आदमियों के बच्चे भी उसी संग के रंग में आ जाए, तो ज्यादा सत्यानाशी कौन बनेगा, उन्हें बोल पूछ बताने दो ना, राजा का बच्चा ज्यादा सत्यानाशी बनेगा, ज्यादा पतित बनेगा। तो ऐसे ही है, बल सूर्यवंशी बच्चे तो हैं, ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं, लेकिन संग के रंग में आने से नीचे ते नीचे बन गए, उतनी पावर नहीं रही, सत्या नाश हो गया, सत्य में ताकत होती है। असत्य बन गए, झूठों के संग में आते आते झूठे बन गए, भारत सबसे जास्ती झूठकंड बन गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन से देश में चल रहा है, अभी तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचारी होती जा रही है, तो यथा राजा तथा प्रजा भ्रष्टाचारी बनती जा रही है। हाथ उठाइए, हाँ
याद में बंदूक कैसे चलाते,
बाप की याद में बंदूक कैसे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं ये प्रश्न नहीं, बंदूक चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, उंगली घुमाई और बंदूक चल गई, लेकिन बंदूक चलाने वाले की बात है, जो बंदूक चलाने वाला है उसका भाव क्या है बंदूक चलाने के पीछे? देश की रक्षा का भाव है या स्वार्थ का भाव है? अगर देश की रक्षा का भाव है तो बंदूक चलाने वाला स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि परमार्थी है या स्वार्थी है? परमार्थी है। अगर खुद की रक्षा के लिए ही सिर्फ स्वार्थ के लिए बंदूक चलाई और हत्या कर दी किसी की, तो नरकगामी होगा या स्वर्गगामी होगा? नीचे के घर में, नीचे घराने में जाके जन्म मिलेगा, पतित बन जाएगा।
कभी कभी बाबा तो स्वार्थ अच्छे के लिए भी तो होता है।
स्वार्थ
नहीं, जैसे
स्व का माने अपनी आत्मा के लिए सिर्फ, दूसरों का कल्याण नहीं देखा, दूसरों का नुकसान हो चाहे फायदा हो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम बन जाए, हमारे रथ का फायदा हो जाए। स्व का जो रथ है ना, स्व माने आत्मा, इस आत्मा का जो रथ है उस स्व का रथ का कल्याण हो जाए, दूसरा चाहे गड्ढे में जाए चाहे मर जाए, इससे कोई मतलब नहीं।
यानी खुद की रक्षा करने के लिए बात।
हाँ, तो खुद की रक्षा करने, खुद की रक्षा वो है जैसे किसी ने आक्रमण कर दिया, कोई हमारी हत्या करने के लिए ही आ रहा है, तो खुद की रक्षा करने के लिए हम भाग गए, अपने को बचा लिया, तो ये क्या खराब काम हुआ? ये कोई खराब काम तो नहीं हुआ, ये तो अच्छा है। जीवन को बचाना, जीवन दिया किसने? ड्रामा प्लान अनुसार हमको जीवन कुदरती मिला हुआ है। इस दुनिया में कोई जीवन लेने और देने की ताकत थोड़ी रखता है, तो जीवन की सुरक्षा करना ये हमारी आत्मा का धर्म है। और संगम युग में तो ये जीवन और ही ज्यादा वैल्यूबल, जीवन रहेगा तो पुरुषार्थ बढ़िया रहेगा, और शरीर छूट गया तो जब तक समझदार नहीं बनेंगे, ज्ञान को समझने लायक नहीं बनेंगे, तब तक का तो जीवन बेकार चला गया।
रात में जो जुटे रहे अस्त्र शस्त्र लेकर आए और उस वक्त अपने बचाव के लिए बंदूक चलाई,
बंदूक रखी किस लिए? अरे बंदूक किस लिए रखी? चलाएंगे तो बाद में, रखी किस लिए बंदूक या तमंचा? किस लिए रखा? निगेटिव संकल्पों के कारण रखा या पॉजिटिव संकल्पों के कारण रखा? हैं? हाँ, हम जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। उसके पीछे संकल्प किस तरह के हैं बंदूक रखने के पीछे? सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा भाग के भी हो सकती है।
घर में रात में भाग के,
हाँ
हाँ,
आप एक बंदूक उठाएंगे एक आदमी, वो दस आदमी आ जाएंगे तो आप कैसे बचेंगे? पूर्व जन्मों के हिसाब से ही हर कार्य होता है, पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं तब ही ऐसा होगा। हमने पूर्व जन्म में और जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा ऐसा असर नहीं हो सकता। अभी विनाश आने वाला, विनाश सामने खड़ा हुआ है, बंदूक हाथ में लेकर के हम जीत पाएंगे? बोलो है? अरे जो विनाश सामने खड़ा हुआ है, महावारी महाभारत युद्ध में जो मारकाट होने वाली है हिंदुस्तान में, उसमें हम बंदूक, एक बंदूक हाथ में लेकर के हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे अपने परिवार की? नहीं कर पाएंगे। यही तो बात है कि भगवान आकर के योग बल सिखाता है, ऐसा योग बल हो कि जिसको हम, जो सामने आए और उसको हम देखें और उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाए। ये रही बंदूक आंखों की। जब आंखों से प्यार की बंदूक चल सकती है और सामने वाला मर सकता है तो उल्टे वाइब्रेशन की बंदूक नहीं चल सकती।
बाबा जो आत्महत्या करते हैं उनकी गति क्या होती
है?
आत्महत्या करते
हैं आत्मा क्या?
आत्महत्या करते हैं जो लोग
आत्महत्या आत्महत्या करने का संकल्प ही परमात्मा संकल्प के विरोधी है। आत्मा की हत्या होती ही नहीं कभी। क्या? जीव हत्या होती है। तो जीवन लेना और जीवन देना हमारे हाथ में होना चाहिए। ये ला को अपने हाथ में उठाने वाली बात नहीं हुई। ला अपने हाथ में उठाना चाहिए
नहीं।
ना अपनी हत्या करने का संकल्प आए कभी भी। कर्म में आना और वाचा में आना, किसी को धमकी देना वाचा से, ये तो दूर की बात। न दूसरों को मारने का संकल्प आना चाहिए, वाचा में आना चाहिए, कर्मणा में आना चाहिए। ये बहुत निगेटिव संकल्प है। जीवन लेना और जीवन देना ये ड्रामा के बस में है। जीवदान देने वाला ईश्वर है। जो भी आत्महत्या करने वाले हैं वो सब भूत प्रेत बनते हैं। अपना ही कल्याण नहीं कर सके तो दूसरों को कल्याण क्या करेंगे?
में संत ज्ञानेश्वर में जो
रेड्डे
के मुंह से वाणी चलाई
है, रेड्डे के मुंह से वाणी चलाई, रेड़ा का मुंह कैसा होता
है? भैंसा।
भैंसे के मुंह से वाणी चलाई
है,
भैंसे के मुख से वेद वाणी चलती
है, चलाई संत ज्ञानेश्वर।
आपने विश्वास कैसे कर लिया? आपने विश्वास कैसे कर लिया? ये बात सच्ची कैसे मान ली? दूसरे ने कह दी और आपने सच्ची मान ली। यही तो मुरली में रोज सुनाया जा रहा है कि भक्ति मार्ग में होती है अंधश्रद्धा। अगर सच्ची बात है तो अभी दिखाओ, ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ। भैंस के मुंह से वेदवाणी सुनो, कोई का सुनवा के दिखाओ। कोई ऐसा संत ज्ञानेश्वर का बच्चा है तो वो सुना के दिखाए। हर बात को क्यों मानना?
नहीं मानने का अर्थ है,
ओपन बोलता है।
हाँ, ओपन तो रटा रटाया बोलता है। बुद्धि की बातें बोलता है क्या पोपट? पोपट को जैसा रटा देगा रटा दिया जाएगा वैसा बोलता रहेगा। और
पार्थ शब्द का अर्थ क्या है?
पार्थ पृथ्वी, पृथ्वी माने माता, प्रथु राजा का नाम जिसने पृथ्वी के ऊपर राज्य किया वो पिता हो गया, पृथ्वी माता हो गई, और पृथ्वी का पुत्र प्रथा कन्या का नाम हो गया, पार्थ पुरुष का नाम हो गया, बच्चे का नाम हो गया। जैसे भरत का पुत्र भारत, और
बाबा दिव्य चक्षु माना क्या
है? ये चक्षु होते हैं स्थूल चक्षु, और एक दिव्य चक्षु होता है जिसे कहते हैं तीसरी आंख, वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है साक्षात्कार वगैरह करते हैं दिव्य चक्षु से, वो उतनी पावरफुल और स्थायी रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान के आधार पर जो दिव्य चक्षु पक्का हो जाता है, आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है सदैव के लिए, वो पक्का दिव्य चक्षु। यज्ञ के आदि में भी बहुतों को साक्षात्कार हुए थे, सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार होते गए और ज्ञान में आते गए। वो टिके हुए हैं या हवा हो गए? हैं? हवा हो गए। लेकिन ज्ञान के आधार पर जिनका बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र खुलेगा, दिव्य चक्षु खुलेगा, वो दिव्य चक्षु वाले देवता बन जाएंगे। देवताओं में ही दिव्य गुण होते हैं। वो देवताएं दो प्रकार के होते हैं, एक चंद्रवंशी और एक सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों में ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है, और चंद्रवंशियों में प्योरिटी के आधार पर उनको भगवान साक्षात्कार कराता रहता है। जैसे राधा वाली आत्मा जहां कहीं भी होगी साक्षात्कार करती रहती है और खुश होती रहती है, ज्ञान बल बुद्धि में नहीं है। और
आज की मूर्ति में गुरुओं के बारे में पौराणिक कहा
है,
इन गुरुओं ने तो हमारी सत्यानाश कर दी है।
हाँ जी,
और भारत की भी कर दी है।
हाँ,
तो ये भारत कौन?
भारत एक तो देश का नाम है, स्थान का नाम जहाँ रहते हैं मनुष्य, और हमारी सत्यानाश कर दी ये ब्रह्मा बाबा अपनी तरफ से बोले। कभी ब्रह्मा की आत्मा भी इंटरफियर करके बोलती है। हाँ, तो वो बोलती है तो कहती है हमारी सत्यानाश कर दी, और भारत की भी सत्यानाश। सबसे जास्ती सत्यानाश हमारी हुई या भारत की हुई? ज्यादा सत्यानाश किसकी होती है?
भारत की शक्ति किसकी थी?
भारत माने माता, भारत माने पिता। भरत पुत्र को भारत कहा जाता है, जिसने भरण पोषण किया वो ही भरत हुआ। हाँ जी, विष्णु को कहा जाता है भरत, भरण पोषण करने वाले को। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। ब्रह्मा के चार पुत्र हुए मानसी, उनमें एक मानसी पुत्र का नाम, वो तो शास्त्रों के आधार पर सनत सनातन सनंदन सनत कुमार हुए, लेकिन रामायण में उनके नाम क्या है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये चार धर्मों के चार बीज हैं, उनमें एक का नाम भरत है। उस भरत ने जरूर विश्व पिता का पालन पोषण किया है एडवांस के आदि में, तो विश्व पिता का पालन पोषण कर दिया माना सारे विश्व का पालन पोषण कर लिया, इसलिए उसका नाम भरत पड़ गया।
गणेश जी की इतनी महिमा गाते हैं और इतना खर्चा करते हैं, बाद में पानी मिश्रण
है, इतनी पूजा करते हैं गणेश जी की, हनुमान जी की हैं, गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं, देवियों की बहुत पूजा करते हैं, और पूजा करके बाद में
पानी
में डुबो देते हैं, नहीं डूबते हैं तो पांव से दबा के डुबो देते हैं। इसलिए कि यहाँ शूटिंग ही ऐसी होती है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, जिनको भगत लोग देवी समझ करके बैठ जाते हैं। इस दुनिया में देवी होंगी, कोई देवी है? देवी कोई नहीं, लेकिन समझ क्या लेते हैं, ये गंगा देवी है, ये यमुना देवी है, ये सरस्वती देवी है, तो ऐसी भावना बैठ जाती है और उनकी भगवान की तरह पूजा करने लग पड़ते हैं। अपने बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे, सारा धन माल ले जाकर के उन देवियों के अर्पण कर देंगे। तो ऐसी जो पूजा करते हैं और लास्ट में जब भगवान प्रत्यक्ष होता है तो उनको पता चल जाता है कि ये तो देवियां नहीं, देवियों के रूप में राक्षसियां हैं, ये गणेश जी नहीं है, गणेश के रूप में कोई जानवर है, जानवर भगवान है, भगवान बन के बैठा हुआ है। तो फिर डूबी जा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उनसे मोह नष्ट हो जाता है। गुरुओं को मारो गोली, फिर उनको ज्ञान की गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। तो डूबेंगे कि बचे रहेंगे, डूब जाते हैं। अरे जब भगवान मिल गया तो भगवान के बच्चे को क्यों भगवान मान लिया है? भगवान एक होता है कि भगवान के बच्चे दर बच्चे जितने भी होते हैं वंशानुक्रम में सब भगवान हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले क्या समझ रहे हैं नेहरू जी से लेकर के अब तक है? उनकी वंशावली में जो पैदा होगा वही शासन सत्ता संभालने की योग्यता रखता है, बाकी कोई भी योग्यता रखने वाला नहीं। ऐसी अंधश्रद्धा बैठी हुई है। ये अंधश्रद्धा रखने का भी कारण क्या है, है? अरे शूटिंग कहाँ होती है, यहाँ संगम युग में शूटिंग होती है। ज्ञानी तू आत्मा एक के प्रभाव में रहेगी, जो अज्ञानी है वो अनेकों के प्रभाव में आते रहते हैं।
आशीर्वाद अक्षर मुक्ति मार्ग होती
है,
बोलते आशीर्वाद अक्षर मुक्ति मार्ग होता है।
आशीर्वाद
वास्तव में तो आशीर्वाद मुक्ति मार्ग में कोई प्राप्ति नहीं होती,
ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद से तो कोई प्राप्ति नहीं होती,
भक्ति मार्ग में भी नहीं होनी चाहिए।
भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं गुरु लोग, आशीर्वाद करते हैं और वो साबित हो जाता है। यहाँ बाप कहते हैं, यहाँ आशीर्वाद की कोई बात नहीं, यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ाई में जो जितना पढ़ाई पढ़ेगा उसको उतना आशीर्वाद खुद ही मिल जाएगा।
लेकिन वास्तव में तो अपने कर्म से ही प्राप्त
होता है, लेकिन भावना क्या बैठी हुई है, भावना का भाड़ा भक्ति मार्ग में मिलता है या नहीं मिलता है? भक्ति मार्ग में भावना बैठी हुई है, गुरु ने ऐसा बोल दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया, इसलिए ऐसा हो गया। भाव प्रधान विश्व रचिरा था, अभी भावना हमारी अंधश्रद्धा की नहीं है, हमारा तो सच्चा श्रद्धा विश्वास है, उसमें अंधा शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। हम भगवान को भी मानते हैं तो तौल लेते हैं, जान लेते हैं, तब भगवान को मानते हैं।
सीता को
राजा
अभिषेक होने के बाद जंगल में जाना, सीता को
14 वर्ष वनवास में रहने के बाद वो है कहाँ की बात, है
रामायण की बात,
रामायण की बात है किस समय की बात, तो संगम युग में जो बातें हुई है वही बातें वहाँ बताई गई है शास्त्रों में।
राज्याभिषेक होने के बाद और भी जाना पड़ा।
हाँ शूटिंग एक बार होती है कि बार बार होती है, आत्मा को एक बार तपाया जाता है या बार बार तपाया जाता है? संगम युग में तो बार बार तपाया जाता है, ये शूटिंग अंत तक चलती ही रहेगी। अट्ठानवे से एडवांस की दुनिया में पांडवों को देश निकाला मिलता है, 14 वर्ष कब होंगे पूरे है 2012 में 14 वर्ष पूरे होते हैं, तो कांटों का जंगल हुआ ना, कांटों के जंगल में, कांटों के जंगल में भ्रमण करना पड़े या महल बना के एक जगह रहना पड़ेगा है, भ्रमण करना पड़े। ये शूटिंग पूरी हो जाएगी फिर प्रैक्टिकल शूटिंग होगी या नहीं होगी? होगी,
इसीलिए
जब तक नई दुनिया ना बने तब तक ये शूटिंग चालू रहेगी।
शास्त्र ने भी पेपर में लिखा हुआ है 2012 में पूरे सृष्टि का विनाश।
पेपर में किसने लिखा?
शास्त्र।
पूरी दुनिया विनाश होगी, तो ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की बात आई है या बाहर की दुनिया विनाश हो जाएगी? लेकिन शास्त्र अखबार में लिखने वालों ने क्या समझ लिया है? बाहर की दुनिया विनाश हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सारी बाहर की दुनिया सन 76 में खत्म हो जाए, 80 में खत्म हो जाए, जैसे मुसलमान लोग 80 के बाद 1980 के बाद कोई तबारीख नहीं मानते, उनके शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है, उनकी 14वीं सदी पूरी हो जाती है तो समझते हैं दुनिया का विनाश हो जाएगा। उस विनाश के टाइम पर हमारे पैगंबर प्रत्यक्ष होंगे। पैगंबर प्रत्यक्ष हुए हैं? नहीं हुए? वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जिनमें प्रवेश करते हैं वो अपने ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं है, तो कहां की बात और कहां अर्थ लगाया हुआ? ऐसे ही शास्त्रों का भी हुआ। शास्त्र जब शुरुआत में द्वापर के आदमी लिखे गए थे तो सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, शास्त्र भी सतो प्रधान थे। फिर मनुष्यों की बुद्धि विकारों को भोगते भोगते जैसे जैसे विकारी बनती गई उनका अर्थ उल्टा कर दिया। तो सारी बातें उल्टी बैठी हुई हैं बुद्धि में। समझते हैं दस सिर वाला कोई रावण था, चार भुजाओं वाला कोई विष्णु था, चार मुखों वाला कोई ब्रह्मा था, छह महीने सोने वाला कोई कुंभकर्ण था। तो ये विकारी बुद्धि का कमाल है या ईश्वरीय बुद्धि? विकारी बुद्धि का कमाल है। कोई पूछता भी नहीं ये कैसे हो सकता है। ओम शांति।